حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، تصنیف محمود مجیب اصغر صاحب۔ ہجرت مدینہ کے چھٹے سال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ چنانچہ ذی قعدہ 6 ہجری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش کو علم ہوا تو انہوں نے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے قریب پہنچ کر حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا اور صحابہ سے مشورہ مانگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا جائے تا وہ قریش کو سمجھائیں کہ ہم صرف زیارت کعبہ اور عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑنا ہمارا مقصد نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو ایسے شخص کا نہ بتاؤں جو اس کام کے لیے زیادہ موزوں ہو اور قریش کی نظر میں خاص عزت رکھتا ہے؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بتاؤ وہ کون شخص ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز کو منظور فرمایا۔ اس طرح حضرت عثمان وہ خوش قسمت شخص ٹھہرے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا۔ لیکن جب ان کے آنے میں دیر ہو گئی اور یہ سمجھ لیا گیا کہ شاید انہیں قریش نے شہید کر دیا ہے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدلہ لینے کا فیصلہ فرمایا اور ایک درخت کے نیچے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے بیعت لی، اور آخر میں اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لی۔ یہ بیعت رضوان اور بیعت شجرا کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ان کے واپس آ جانے پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح کا معاہدہ طے پایا کہ مسلمان اگلے سال آ کر کعبہ کا طواف کر لیں۔ یہ تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو قریش کے قبیلہ بنو امیہ سے تھے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سفیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی انسان نہ تھے۔ سرخ و سفید خوبصورت چہرے والا یہ نوجوان ایام جاہلیت میں بھی اچھے کردار کا مالک تھا۔ انہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو ان ابتدائی مسلمانوں کے گروہ میں شامل کر لیا تھا جن کی قرآن کریم نہایت قابل رشک الفاظ میں تعریف فرماتا ہے۔ انہوں نے خدا کی راہ میں بے دریغ مال خرچ کیا۔ وہ بہت باحیا اور شریف انسان تھے، ان کی خوبیوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بہت نرم دل رکھتے تھے۔ انہوں نے ہزاروں غلاموں کو آزاد کیا۔ مدینے میں کوئی گلی ایسی نہ تھی جہاں ان کا خرید کردہ آزاد غلام چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ وہ کاتب وحی اور قرآن کریم کے ابتدائی حفاظ میں سے تھے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے یکے بعد دیگرے آپ کی شادی ہوئی۔ انہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس قدر خدمت اسلام کی توفیق ملتی رہی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا، وہ اب جو چاہے کرے، خدا اس کو نہیں پوچھے گا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس سے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان 10 خوش نصیب مہاجرین میں شامل فرمایا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شورا کے رکن تھے اور جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اعتماد تھا، اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اس لیے عشرا مبشرہ کہلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے۔ ان دونوں خلافتوں کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مشیر اور امین و معتمد رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد अल्लाह ताला ने आपको खलीफा बनाया। उस वक्त आपकी उम्र 70 साल थी। बुढ़ापे के बावजूद खिलाफत की जिम्मेदारियां पूरी वफा के साथ निभाते रहे। इनके अहद खिलाफत में इस्लामी सरहदों में मजीद वसत पैदा हुई। इस्लाम का पैगाम मालूम दुनिया तक पहुंच गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को कुरान से खास इश्क था। आपने सारे आलम इस्लाम में कुरान करीम की इशात का सुनहरी कारनामा सर अंजाम दिया। पहला बहरी बेड़ा भी अहद उस्मानी में ही बना। खुदा की राह में आप आजमाए भी गए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह ताला ने शहादत के आला मुकाम पर सरफराज फरमाया। शहादत से एक रात पहले आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फरमाया था कि उस्मान आज शाम रोज़ा हमारे साथ खोलना। शहादत के वक्त आपकी उम्र 82 साल थी। आप सच्चे आशिक कुरान थे। जब आपको शहीद किया गया उस वक्त आप कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। आपने एक भरपूर खिदमत दीन से मामूर जिंदगी गुजारी। खुदा की हजारों हजार रहमतें हों हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो पर, जिन्होंने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी में अपने अहद को खूब निभाया और मसाइब और मुश्किलात में भी सब्र और रजा का दामन न छोड़ा और अपना मामला खुदा के सपुर्द कर दिया। आओ बच्चों, आपको हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की कहानी सुनाई। इब्तदाई हालात। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो कुरैश के कबीला बनु उमैया में असहाबुल फील के वाके से 5 साल बाद सन 575 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अफ़ान और वालिदा साहिबा का नाम उर्वा था। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 5 साल और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से 2.5 साल छोटे थे, जबकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आप 8 साल और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से 25 साल बड़े थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद कपड़े के ताजिर थे और काफ़ी अमीर आदमी थे, इसलिए आपकी परवरिश बड़े नाज़ो नेमत से हुई। बचपन से ही आपकी तबीयत नेकी की तरफ माइल थी। शर्मो हया हद दर्जा थी। आपके वालिदैन ने आपकी अच्छी तरबियत की और लिखना पढ़ना सिखाया। उस जमाने में स्कूल वगैरह तो थे नहीं, इसलिए सिर्फ वही लोग लिखना पढ़ना सीख सकते थे जो बहुत अमीर और बाअसर खानदानों में से होते थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुरे कामों से नफरत थी। आप हमेशा बुरे कामों से बचते थे। बड़े होकर आपने अपने खानदानी पेशा तिजारत को अपनाया, जिसके बायस आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को कई दूसरे मुल्कों में भी जाने का मौका मिला। कबूले इस्लाम। आपकी उम्र उस वक्त 34-35 साल थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के हुक्म से दावा नबूवत फरमाया। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कबीला बनु हाशिम में से थे और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो बनु उमैया में से थे। अपने वालिद की तरफ से 5वीं और वालिदा की तरफ से 4थी पुश्त में आपका ताल्लुक आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता था। अगरचे आपके बुजुर्गों यानी हरब बिन उमैया और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुतलिब के दरमियान कुरैश की सरदारी का झगड़ा हुआ था और बनु हाशिम और बनु उमैया के ताल्लुकात ज्यादा अच्छे ना रहे थे, ताहम आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके बुलंद अखलाक की वजह से बहुत अच्छा समझते थे। तिजारत में मेहनत और दयानतदारी की वजह से सारी कौम ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन का खिताब दिया था। उस जमाने में तिजारत ही सबसे ज्यादा इज्जत वाला पेशा शुमार होता था। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी यही पेशा था और इनके आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के भी दोस्ताना ताल्लुकात थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने में सब पर सबकत ले गए। उन दिनों हजरत उस्मान तिजारत के सिलसिले में शाम गए हुए थे। वापस आए तो हज़रत अबू बकर ने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, हज़रत ज़ुबैर बिन अलआवाम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत तलहा बिन अबैदुल्लाह को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। ये पांचों हज़रात इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो गए। चुनाचे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनको लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। चुनाचे बारी बारी सब ने बैत की। इनमें हज़रत उस्मान सबसे पहले बैत करने वाले बने। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अफराद यानि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, चचाज़ाद भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हुज़ूर के घर में बच्चों की तरह परवरिश पा रहे थे, और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद जो मर्द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया वो हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। इसलिए एक लिहाज से इस्लाम लाने वालों में आपका दूसरा नंबर और दूसरे लिहाज से पांचवा नंबर बनता है। बहरहाल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम में दाखिल होने वाले उस पेशरो ग्रोह में शामिल हुए जिन्हें अस्साबिकून अल अव्वलून यानी सबसे पहले ईमान लाने वाले कहा जाता है, जिनकी कुरान करीम नहायत खूबसूरत अल्फाज में तारीफ फरमाता है। हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह। 3 साल तक आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग के सिलसिले को कदरे मख्फी रखा और अपने मिलने वालों या आगे उनके मिलने वालों तक तबलीग का दायरा महदूद रहा। दावा नबूवत के 4th साल आगाज में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खुलम खुला तबलीग करने का हुक्म दिया और जल्द ही मक्के के गली कूचों में इस्लाम का चर्चा होने लगा, जिसके नतीजे में कुरैश मक्का ने मुखालफत की और जो लोग मुसलमान हो चुके थे उनको वापस अपने माँ बाप के दीन बुत परस्ती में लाने के लिए जुल्म शुरू कर दिया। गालिबन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद अफ़ान फौत हो चुके थे और आपके चचा हकम बिन अबिल आस ही आपके लिए बाप की तरह थे। उन्होंने आपको खूब मारा पीटा और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से रोकने के लिए आपके पाँव में बेड़ियाँ डाल दी। आपने सब्र व तहम्मुल से काम लिया और इन मसाइब की कुछ परवाह न की। चंद दिन बाद आपके चचा ने गुस्से में आकर आपको घर से निकाल दिया। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से सबसे ज़्यादा मुखालफत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब ने की और वह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन बन गया। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील बिनते हर्ब बिन उमैया भी उसके साथ शामिल थी। थोड़ा ही अरसा पहले आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियों हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह अबू लहब के 2 बेटों से हुए थे और रुख्सती होना अभी बाकी थी। अबू लहब और उसकी बीवी ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में अपने बेटों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियों को तलाक दिलवा दी। हज़रत उस्मान बहुत नेक, बाइज्जत, खूबसूरत और शरीफ नौजवान थे और अपने ख़ानदान से अलग कर दिए गए थे, इसलिए आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान से कर दिया। इस्लाम लाने से पहले भी आपने 2 शादियां की। आपकी पहली बीवी का नाम उम्मे अम्र बिनते जुंदब और दूसरी बीवी का नाम फातिमा बिनते वलीद था। पहली बीवी से आपके 5 बच्चे और दूसरी में से 3 बच्चे पैदा हुए। आपके बड़े बेटे का नाम अम्र था, इसलिए आप अबू अम्र कहलाते थे। ये बीवियां इस्लाम के दुश्मनों की औलाद में से थीं। दूसरी बीवी तो वलीद बिन मुगैरा की बेटी थी और वलीद बिन मुगैरा मक्का का बड़ा सरदार था और अबू जहल के करीबी रिश्तेदारों में से था। मालूम होता है कि इस्लाम लाने के नतीजे में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने बीवी बच्चों से अलग कर दिया गया था और आपको इन हालात में मक्का में बहुत ख़तरा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी से शादी के नतीजे में इनके लिए खतरात और भी बढ़ गए। हिजरत हबशा। मक्के में दिन ब दिन कुरैश के सरदारों के मंसूबों की वजह से मुसलमानों के लिए तकालीफ का सिलसिला बढ़ रहा था और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को भी सख्त खतरा था। इन हालात में बाज मुसलमान मर्दों और औरतों को हबशा हिजरत की इजाजत मिल गई। हबशा, जिसे एबेसिनिया और एथोपिया भी कहते हैं, ईसाई मुल्क था और वहां एक रहम दिल आदिल बादशाह हुकूमत करता था जिसे नजाशी कहते थे। नजाशी ने अपने मुल्क में मजहबी आजादी दे रखी थी। तिजारत की वजह से चूंकि हबशा के हालात पहले से मालूम थे, इसलिए जिन लोगों के लिए मक्का में ज्यादा खतरात थे उन्हें आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा हिजरत करने की इजाजत दे दी। चुनाचे नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 औरतें हबशा हिजरत कर गए। इनमें हजरत उस्मान और इनकी बीवी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थीं। हजरत रुकैया के बतन से अब्दुल्लाह पैदा हुए, इसलिए हजरत उस्मान की कुन्नियत अबू अमर की बजाय अबू अब्दुल्लाह हो गई। कहते हैं कि हजरत उस्मान का ये बेटा हबशा में पैदा हुआ था। मक्के में कुछ अरसे बाद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने से कुफार ने तकालीफ देने और दुख पहुंचाने में इजाफा कर दिया। चुनाचे नबूवत के 6वें साल मजबूरन मजीद 83 मर्द और 18 औरतें हिजरत करके हबशा चले गए। जब आप हबशा हिजरत करके तशरीफ ले गए तो आप ही अमीर काफिला थे। हबशा में अपने मुख्तसर कयाम के दौरान आपको तबलीग की भी तौफीक मिलती रही। इस तरह आप भी उन चंद खुशनसीबों में से थे जिन्हें इस्लाम के आगाज में ही बैरून मुल्क तबलीग करने की सआदत नसीब हुई। इसी दौरान हबशा में ये अफवाह फैली कि मक्के के तमाम लोग मुसलमान हो गए हैं। चुनाचे ये खुशखबरी सुनकर बाज़ लोग वापस आ गए। इनमें हजरत उस्मान, इनकी अहलिया हजरत रुकैया और साहिबजादा अब्दुल्ला भी शामिल थे। मक्का पहुंचकर मालूम हुआ कि कुफार ने झूठी अफवाह फैलाई थी ताकि मुसलमान वापस आ जाएं और इनका तख्ताए मश्क बने। हबशा से वापस आकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मक्के में रिहायश इख्तियार कर ली और अपनी खानदानी वजाहत और कुरैश में अपने इम्तियाजी मकाम के बायस कुरैश मक्का के सरदारों ने आपको आपके हाल पर छोड़ दिया और आप तिजारत और तबलीग इस्लाम में लग गए। हिजरत मदीना तक दीनी खिदमात। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा नबूवत के बाद 13 साल तक मक्का में रहे और इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मदीना हिजरत फरमाई। इन 13 सालों में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम को बड़ी मुश्किलात में से गुजरना पड़ा, लेकिन मुश्किलात की परवाह ना करते हुए आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावते इल्लाह के कामों में वसत पैदा करते रहे और हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और अक्सर इब्तदाई सहाबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अहम काम में मदद करते रहे। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर आपका ईमान दिन ब दिन तरक्की करता रहा और आप दीन की खिदमत में लग गए। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता था। चुनाचे कुरान मजीद का जितना हिस्सा नाजिल होता था उसको हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो समेत सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम हिफ्ज कर लेते थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो चूंकि बहुत ज़हीन और पढ़े लिखे नौजवान थे और आपका हाफिजा बहुत उम्दा था, इसलिए आप कुरान करीम को साथ साथ जुबानी याद करते रहे और इस तरह आप इब्तदाई हाफिजों में शुमार होते हैं। मक्का में क्याम के दौरान आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के इर्द गिर्द फैले हुए कबाइल में तशरीफ ले जाते और तजारती मंडियों में यानी उकाज, मजन्ना और जुल्मजाज के मकामात पर पहुंचकर अरब के मुख्तलिफ कबाइल को जो वहां मुकर्रा महीनों में आते थे तबलीग इस्लाम फरमाते। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो भी कई मरतबा अपने आका के साथ इन तबलीगी सफरों पर तशरीफ ले जाते। हज के दिनों में जो लोग मक्के में आते आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाकर ख़ास तौर पर उनको इस्लाम की दावत देते। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात आपको भी साथ रखते। इसके अलावा हज़रत उस्मान के चूंकि अरब में काफ़ी लोगों से ताल्लुकात थे और आपका घराना काफ़ी मशहूर था, इसलिए आप भी तबलीग का कोई मौका हाथ से ना जाने देते थे और अपने मिलने जुलने वालों को आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाते। इन तबलीगी सफ़रों में कुफारे मक्का, ख़ास तौर पर अबू जहल और अबू लहब वगैरह पीछा करते और मुख्तलिफ जलील हरकत करते और लोगों से कहते कि नाऊज़ु बिल्लाह आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथी मजनून हैं, इनकी बातों में ना आना। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फैसला किया कि जो वही नाजिल होती है वो याद करने के साथ साथ लिख ली जाए, तो आपने इस मकसद के लिए चंद खास पढ़े लिखे सहाबा को मुंतखिब फरमाया। इसमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे, चुनाचे हज़रत उस्मान कातबे वही के तौर पर खिदमत सर अंजाम देने लगे और आखिरी वक्त तक इस खिदमत को जारी रखा। अगरचे मक्के में सख्त मुखालफत थी और कुफारे मक्का लोगों को आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से रोकते थे, लेकिन फिर भी बाज लोग तहकीकात के लिए बाहर से आते थे। हज़रत उस्मान की माली हालत चूंकि बहुत अच्छी थी और आपकी बीवी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, इसलिए बाज खास मेहमानों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर ठहराते और आप इनके मेहमान नवाजी का खूब हक अदा करते। माली कुर्बानियों में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। कुरैश मक्का के कई गुलाम इस्लाम लाने में सबकत ले गए। इनके ज़ालिम आका इन्हें सख्त जिस्मानी सजाएं देते थे। ऐसे कई गुलामों को सहाबा इनके मालिकों से खरीद कर आज़ाद कर देते थे और इस तरह वो इनके मजीद जुल्म व सितम से बच जाते थे। हज़रत उस्मान ने भी कई ऐसे गुलामों की कीमत अदा करने की तौफीक पाई। हिजरत मदीना। मक्के से मदीना हिजरत इस्लाम की तारीख का एक अहम वाक़या है, जहाँ से आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की ज़िंदगियों का एक नया दौर शुरू होता है। मक्के में मुखालफत इस कदर बढ़ गई थी कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के लिए अब मक्के में रहना मुमकिन न था। हज पर यसरब के कुछ लोगों ने नबूवत के 11वें साल में इस्लाम कबूल किया। अगले साल 12 मर्दों और औरतों ने मक्का वालों से छुपकर वादी अकबा में रात के वक्त बैत की। इन्होंने वापस जाकर खूब तबलीग की और अगले साल यानी नबूवत के 13वें साल में 72 मर्दों और 2 औरतों ने हज के मौके पर इसी जगह बैत की। 12वें साल वाली बैत को अकबा उला और नबूवत के 13वें साल होने वाली बैत अकबा सानिया के नाम से मशहूर है। यसरब के मुसलमानों ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्के के मुसलमानों को अपने पास आने की पेशकश की, जिसे अल्लाह ताला के हुक्म से आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। चुनाचे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक दो दो करके मक्के के मुसलमानों को यसरब हिजरत करने की इजाज़त दे दी। हज़रत उस्मान भी अपनी अहलिया हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को साथ लेकर मक्के से मदीना हिजरत कर गए। कुफारे मक्का को इल्म हुआ कि अक्सर मुसलमान यसरब हिजरत कर गए हैं, तो उन्होंने तमाम कबाइल के नुमाइंदों को लेकर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया। उस वक्त आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत की इजाज़त मिल गई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लेकर हिजरत कर गए। हुज़ूर की आमद से यसरब का नाम मदीनातुन नबी मशहूर हो गया, यानी नबी का शहर, और बाद में सिर्फ मदीना रह गया। जो लोग मक्के से हिजरत करके मदीना गए थे उनको मुहाजिर कहा जाता है, और मदीने के मुसलमानों को जिन्होंने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का वादा किया था अंसार कहलाए। अंसार का लफ्जी मतलब मदद करने वाले हैं। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजरीन में मोहब्बत और प्यार के रिश्तों को मजबूत करने के लिए अंसार और मुहाजरीन को आपस में एक दूसरे का भाई बना दिया। चुनाचे हज़रत उस्मान को حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انوش بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے اس معاشرے میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے اور بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اس لیے مدینے کے سوسائٹی میں بھی آپ نے جلد اپنا مقام بنا لیا اور اپنے تجارتی کاروبار کو جاری رکھا۔ مدینے میں بھی آپ کو بھرپور دینی خدمات کی توفیق ملی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مالی وسعت عطا فرمائی اور خدمت دین میں آپ نے بے دریغ خرچ کیا۔ کئی موقعوں پر مالی قربانی میں آپ سب صحابہ پر سبقت لے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نیک کاموں اور دینی خدمات سے بہت خوش ہوتے اور اپنی خوشنودی کا بعض اوقات اظہار فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ مکے سے مدینہ ہجرت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی، انہیں مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی۔ اس دوران قریش مکہ نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے 1000 کا لشکر تیار کیا، جو پوری طرح مسلح ہو کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے مکے سے روانہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو ساتھ لے کر اس لشکر کو روکنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے۔ بدر کے مقام پر جنگ ہوئی۔ حضرت عثمان اپنی بیوی حضرت رقیہ کی بیماری کی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں مدینہ رک جانے کا ارشاد فرمایا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو معجزانہ طور پر فتح نصیب ہوئی، ابو جہل اور بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے۔ مسلمانوں کے لیے یہ بڑی خوشی کا موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ سے فتح بدر کی خبر لے کر مدینہ پہنچے، تو اسی روز حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، جس کا حضرت عثمان اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کو بہت دکھ ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عجیب حالت تھی، ایک طرف آپ کو جنگ بدر میں شامل نہ ہونے کا دکھ اور دوسری طرف حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا غم تھا۔ تاہم آپ کے جذبہ جہاد کی قدر کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اصحاب بدر میں شامل فرمایا اور مال غنیمت سے حصہ بھی دیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے ساتھ نکاح کے نتیجے میں آپ ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہو گئے، جس کا مطلب ہے دو نوروں والا۔ حضرت ام کلثوم سے حضرت عثمان کا نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا اور 3 ماہ بعد جمادی الآخر میں رخصتی عمل میں آئی، ان سے آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 4 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عثمان کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اگر کوئی اور بیٹی ہوتی جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں اس کو بھی عثمان کے عقد میں دے دیتا۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے مختلف وقتوں میں 4 مزید شادیاں کیں۔ آپ کے ان بیویوں کے نام یہ بیان کیے جاتے ہیں: فاختہ بنت غزوان، بنت عیینہ، رملہ بنت شیبہ اور نائلہ بنت فرازہ۔ غلاموں کی آزادی۔ عرب قدیم سے غلامی کا رواج تھا، بڑے بڑے لوگ غریب قوموں کے باشندوں کو خرید لیتے تھے اور پھر وہ غلام بن کر اپنے مالکوں کے رحم و کرم پر ہوتے تھے۔ بعض لوگ جنگوں میں دشمنوں کے قیدیوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ اسلام نے اس کی ممانعت فرمائی اور غلام آزاد کرنے کو ایک بہت بڑی نیکی قرار دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کافی مالدار آدمی تھے، آپ نے نہ صرف خود غلام آزاد کیے بلکہ کئی مالکوں کو غلاموں کی قیمت ادا کر کے انہیں آزاد کیا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ہزاروں غلاموں کو آزاد کیا اور مدینے کی کوئی گلی ایسی نہ تھی جہاں آپ کا خرید کردہ آزاد غلام نظر نہ آئے۔ بعد میں اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے آپ نے یہ معمول بنا لیا کہ ہر جمعے کے روز ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ मदीने में एक इम्तियाजी खिदमत। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बास गैर मामूली माली खिदमात की सआदत मिली और इस सआदत में आप मुनफरिद नजर आते हैं। हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों पर नहाय तंगी का जमाना था और मुहाजरीन की आबादकारी में कई मुश्किलात का सामना था। चुनाचे बुनियादी जरूरतों में से एक पीने का पानी था, जिसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी फिक्र रहती थी। दरअसल मदीने में जहां मुसलमान आबाद हुए, मीठे पानी का सिर्फ एक ही कुआं था, जिसका मालिक एक यहूदी था। वो कुएं का पानी फरोख्त किया करता था। जिन मुसलमानों की हालत अच्छी थी वो तो मीठा पानी खरीद लेते थे और दूसरे खारे पानी पर गुजारा करते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुसलमानों में तहरीक फरमाई कि यहूदी से मीठे पानी का कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया जाए। कुएं को अरबी में बिरुन कहते हैं। इस कुएं का नाम बेरे रोमा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बेरे रोमा को खरीदे वो जन्नती है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत रहम दिल थे। इनसे मुसलमानों की तंगी देखी ना जाती थी। चुनाचे आपने ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। इस तरह मुहाजरीन और अंसार के पीने के पानी की तकलीफ दूर हो गई और आपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी हासिल की। आपने इस कुएं की कीमत 20,000 या बाज के नज़दीक 35,000 दिरहम अदा की। सुलह हुदैबिया में बतौर सफ़ीर खिदमत। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आ जाने के बाद कुफारे मक्का बार बार हमला आवर होते रहे और 5-6 साल तक कुफारे मक्का की मुसलमानों के साथ कई जंगें हुई। सबसे पहले जंग बदर हुई, जिसमें हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीमारी की वजह से हज़रत उस्मान शामिल ना हो सके। जंग ओहद में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शामिल थे। इसके बाद मदीने के यहूदियों के साथ भी जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। हिजरत के 5वें साल कुरैश मक्का ने अरब के तमाम कबाइल को साथ मिलाकर फौजें तैयार की और अबू सुफयान को सिपा सालार बनाकर मदीने पर हमला आवर हुए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के गिर्द खंदक खुदवा कर दिफा किया। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। हजरत उस्मान ने इन सब जंगों में हिस्सा लिया। इसके बाद मदीने के एक यहूदी कबीले के साथ जंग हुई। इसमें भी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो शामिल थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान और बाकी सहाबा को मदीना आए हुए 6 साल गुजर चुके थे और मक्के वालों ने मुसलमानों का हज बंद किया हुआ था। इसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा को बड़ा रंज था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हरदम खाना काबा की तरफ रहती थी, बल्कि पहले मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते थे और मदीना आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला ने खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। चुनाचे 5 वक्त रोजाना काबा की तरफ मुंह करके मुसलमान नमाज पढ़ते थे, लेकिन हज इनका बंद कर दिया गया था। इन हालात में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुबारक ख्वाब देखा कि आप 1400-1500 सहाबा के साथ खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं और सहाबा के सर के बाल पूरे मुंडे हुए हैं या छोटे छोटे किए हुए हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाई हुक्म समझकर 1400-1500 सहाबा को साथ लिया और तवाफ के लिए काबा की तरफ रवाना हुए। कुरैश को इल्म हुआ तो वो जंग की तैयारी करने लगे और मक्के में दाखिल होने के तमाम रास्ते बंद करके खड़े हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के करीब हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचकर कुरैश के साथ बातचीत करने का फैसला किया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस्लाम का सफीर बनाकर कुरैश मक्का के पास भेजा। जैसा कि शुरू में लिखा जा चुका है कि आपके बारे में मशहूर हो गया कि शायद कुरैश ने आपको शहीद कर दिया है। चूंकि आप सारे मुसलमानों के नुमाइंदा थे, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि अगर ये खबर दुरुस्त हुई तो हम मक्के वालों से जंग करेंगे और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो का बदला लेंगे। ये कोई मामूली फैसला न था, इसलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से एक दरख्त के नीचे बैठकर बैत ली और आखिर में अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर रख कर खुद ही हजरत उस्मान की तरफ से बैत की। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ ले आए और इनके शहादत की अफवाह गलत साबित हुई। दरअसल आपके गैर मुस्लिम रिश्तेदार आपसे मिलने लग गए थे, इसलिए आपको वापस आने में देर हो गई। बहरहाल आपके समझाने पर कुरैश हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए थे और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के नुमाइंदा सुहैल बिन अमर के दरमियान जंग बंदी का बाकायदा मुआहदा हुआ, जिसकी कई शराइत थी और अगर बाद में कुरैश इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना करते तो 10 साल तक कुरैश और मुसलमानों में कोई जंग ना होती। बहरहाल इस मुआहदे की रूह से ये तय हुआ कि अगले साल मुसलमान खाना काबा का तवाफ कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में सुलह हुदैबिया को फतह मुबीन यानी खुली खुली फतह करार दिया है। चूंकि अमन कायम होने के बाद इस्लाम को गैर मामूली तरक्की नसीब हुई और इस दौरान आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हुक्मरानों और बादशाहों को तबलीगी खतूत रवाना फरमाए और बरसों बाद सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अपने गैर मुस्लिम रिश्तेदारों और ताल्लुकदारों के साथ मिल बैठे और अफहाम व तफहीम के जरिए इस्लाम को काफ़ी तरक्की नसीब हुई। 2 साल तक कुरैश इस मुआहदे पर कायम रहे और इस दौरान इतने लोग मुसलमान हुए कि जंग के दिनों में मुसलमान होने वालों से 8-10 गुना ज़्यादा होंगे और इस्लाम का पैगाम रोम और ईरान के बादशाहों कैसरो किसरा के ऐवानों तक पहुंच गया। चंद एक खास सहाबा थे जिनसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों के नाम तबलीगी खतूत लिखवाए और इन सहाबा में हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो बतौर खास शामिल थे। इस्लाम के सफीर के तौर पर हजरत उस्मान का हुदैबिया में खिदमत सर अंजाम देना आपकी जिंदगी का एक नहायत अहम वाकया है और अपने दूररस नताइज के पेश नजर एक बहुत बड़ी खिदमत है। मुआहदे के मुताबिक सुलह हुदैबिया के अगले साल यानि 7 हिजरी में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मक्का रवाना हुए और काबा का तवाफ फरमाया, जिसे उमरा कहते हैं, क्योंकि हज के मखसूस दिनों के अलावा जब भी हज की तरह काबा का तवाफ किया जाए तो इसे उमरा कहते हैं। इस सफर में हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल थे और इस तरह कई सालों की बंदिश के बाद तवाफ़े काबा और मनासिक के दौरान आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत उस्मान को भी बाकी सहाबा की तरह अल्लाह ताला से बहुत दुआएं करने की तौफीक मिली। फतेह मक्का। सुलह हुदैबिया के 2 साल बाद अल्लाह ताला की तकदीर ने ये रंग दिखाया कि 8 हिजरी में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के हाथों मक्का मौजज़ाना तौर पर फतह हो गया, जिसका आम हालात में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इसकी वजह यह हुई कि कुरैश मक्का ने सुलह हुदैबिया की शराइत की खिलाफ वर्जी की और मुसलमानों के हलीफ पर हमलावर हुए और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम के साथ मक्के पर चढ़ाई की और मक्के वालों ने मुकाबला किए बगैर हथियार डाल दिए। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा फातिहाना शान से मक्के में दाखिल हुए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो भी इनमें शामिल थे। ये गैर मामूली वाक्या आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम की दुआओं और कुर्बानियों का नतीजा था। अगरचे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर आम मुआफी का ऐलान कर दिया था, लेकिन चंद एक कुफार के इतने घिनौने जराइम थे कि इनके कत्ल का हुक्म था। इनमें अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी सराह भी थे, जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के रजाई भाई थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत रहम दिल थे। इनके दिल में तहरीक पैदा हुई कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरख्वास्त करके अपने रजाई भाई को बचा लिया जाए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमत लिल आलमीन थे और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की कदर करते थे, इसलिए हजरत उस्मान की दरख्वास्त करने पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सराह को माफ कर दिया। ये इब्तदा में मुसलमान थे और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबे वही भी थे। बाद में इनको ठोकर लगी और इस्लाम से मुनहरिफ हो गई। और बाद संगीन जराइम के मुर्तकिब हुए। प्यारे बच्चों, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमें ये दुआ सिखाई है, रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैताना वहब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब, यानी ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को टेढ़ा ना होने दे बाद इसके कि तू हमें हिदायत दे चुका हो और हमें अपनी तरफ से रहमत अता कर, यकीनन तू ही है जो बहुत अता करने वाला है। हम सबको अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ कसरत से करनी चाहिए। चुनाचे फतह मक्का पर माफी के नतीजे में तौबा करके फिर मुसलमान हो गए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफा हुए तो आपने अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सराह को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया। फतह मक्का के नतीजे में बड़े बड़े सरदारान कुरैश भी इस्लाम में दाखिल हुए, जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के खानदान में से थे। चुनाचे अबू सुफियान ने इसी मौके पर इस्लाम कबूल किया। सुलह हुदैबिया और फतह मक्का के दौरान मक्का के दो बहुत बड़े सरदारों के बेटे इस्लाम में दाखिल हुए, जिन्होंने बाद में कैसर और किसरा को शिकस्त दी और शाम और इराक और मिस्र फतह किया। इनमें खालिद बिन वलीद सर फहरिस्त हैं। इनके अलावा आस बिन वाइल के बेटे अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो भी काबिल जिक्र हैं, जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के चचाजाद भाई थे। फतह मक्का के मौके पर अबू जहल जैसे सख्त तरीन दुश्मन का बेटा इकरमा भी इस्लाम में दाखिल हो गया। गोया सुलह हुदैबिया और फतह मक्का ने एक इनकलाब पैदा कर दिया। मस्जिद नबवी की तोसी। हिजरत मदीना के बाद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम के साथ वकारे अमल करके मस्जिद तामीर फरमाई थी, जो मस्जिद नबवी कहलाती है। इस मस्जिद के साथ ही आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मुमिनीन के लिए रिहायशी कमरे बनवाए थे, जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत ने रिहाइश इख्तियार की। जो जो इस्लाम फैल रहा था, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी और मस्जिद नबवी नाकाफी हो गई थी। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तौसी का मंसूबा बनाया और सहाबा को तहरीक फरमाई कि मस्जिद के इर्द गिर्द के मकानात खरीद कर मस्जिद में शामिल कर लिए जाएं। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को जो मस्जिद नबवी की तौसी के लिए इर्द गिर्द के मकानात खरीदने के लिए माली कुर्बानी करेगा जन्नत की बिशारत दी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को माली वसत हासिल थी और आपके अंदर माली कुर्बानी का जज्बा बहुत बढ़ा हुआ था। आपने फौरन 25-30 हजार दिरहम का इंतजाम किया और मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द के मकानात और जमीन वगैरह खरीद कर मस्जिद नबवी में शामिल कर दिए। आपकी इस कुर्बानी और दीनी खिदमत को कयामत तक आने वाली नस्लें याद रखेंगी। बाद में अपनी खिलाफत के जमाने में आपने मस्जिद नबवी के फर्श और छत वगैरह को भी पक्का करवाया। ग़ज़वा तबूक। फतह मक्का के बाद सारे अरब में इस्लाम फैल गया और बाज़ यहूदी कबाइल को पहले ही इनके वादा खिलाफियों और साजिशों की वजह से मदीने से निकाला जा चुका था। फिर खैबर में भी इनको शिकस्त हुई और वो कैसरे रोम की हुकूमत में चले गए। इनकी रेशा दवानियों और कई और वजूहात की बिना पर कैसरे रोम ने शाम की सरहद पर फौजें जमा करके मुसलमानों पर हमला करने का फैसला किया। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तशवीश हुई, क्योंकि एक तो मदीना में कहत पड़ा हुआ था, दूसरे चंद हजार मुसलमान लाखों की तादाद में रूमी फौजों का मुकाबला किस तरह कर सकते थे। ताहम आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का ऐलान फरमाया और माली कुर्बानी की तहरीक फरमाई। इस मौके पर सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम ने इंतहाई कुर्बानी का नमूना पेश किया और जिसके पास जो कुछ था अपनी ईमानी कैफियत के मुताबिक ले आया और देखते ही देखते 30,000 का लश्कर तैयार हो गया। इससे कबल किसी भी जंग के लिए आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इतना बड़ा लश्कर तैयार नहीं हुआ था। इतने बड़े लश्कर के लिए खाने पीने का सामान और सवारियों और जंगी हथियारों का इंतजाम करना कोई मामूली काम ना था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इस मौके पर 1,000 ऊंट जिनमें से 100 अनाज से लदे हुए थे, 100 या 50 घोड़े और 10,000 दीनार नकद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए और फौज के एक तिहाई के लिए हर किस्म की जरूरियात पेश फरमाईं। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की इस गैर मामूली कुर्बानी से इस कदर खुश हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब उस्मान जो चाहें करें, खुदा इनको नहीं पूछेगा। गोया आपकी इंतहाई दर्जे की नेकी पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इजहार खुशनूदी था, जिसमें ये इशारा था कि आपसे सिवाय नेकी के और कोई फेल सरजद हो ही नहीं सकता। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो खुद भी इस गज़वे में शामिल हुए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरब के सरहदी इलाकों में गए जो शाम के साथ थे, जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सरहदी कबाइल के साथ मुआहदे किए। और चूंकि कैसर रोम की फौजों वाला खतरा टल गया था, इसलिए वापस तशरीफ ले आए और कोई जंग वगैरह ना हुई। ये वही मौका था जब सहाबा ने एक दूसरे से बढ़कर कुर्बानी पेश करने की कोशिश की। चुनाचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर का आधा साजो सामान लेकर आए, इस ख्याल से कि आज हजरत अबू बकर से बढ़ जाऊंगा। और जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो आए तो हजरत उमर और दूसरे सहाबा ये सुनकर हैरान रह गए कि घर का सारा सामान लेकर आ गए हैं और घर में खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के सिवा कुछ छोड़कर नहीं आए। इस मौके पर बाज और गरीब सहाबा भी थे जो चंद खजूरें या चंद दिरहम लेकर आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कुर्बानी को भी कबूल फरमाया। किताबते वही। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को जो खिदमात इस्लाम के लिए सरंजाम देने की सआदत नसीब हुई, इनमें से एक नुमाया खिदमत कुरान करीम की किताबत है। आप आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कातबे वही का काम किया करते थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। वो रिवायत करते हैं कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आयात इकट्ठी नाजल होती थी तो आप अपने कातबीन वही में से किसी को बुलाकर इरशाद फरमाते थे कि इन आयात को फलां सूरत में फलां जगह पर लिखो, और अगर एक ही आयत उतरती थी तो फिर भी इसी तरह किसी कातबे वही को बुलाकर और जगह बतलाकर इसे तहरीर करा देते थे। किताबते वही का काम कई और सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम भी करते थे, और इब्तिदा में कुरान करीम चमड़े के टुकड़ों, पत्थर के सिलों और खजूर की छाल वगैरह पर मुतफर्रिक रंग में लिखा जाता था। हजरत उस्मान को किताबते वही और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक आयात और सूरतों की तरतीब का काम करने की खिदमत भी नसीब हुई, और ये सिलसिला सारे कुरान करीम के नजूल और आखिरी तरतीब तक जारी रहा। अहद नबवे में मुतफर्रिक खिदमत। दावा नबूवत के बाद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का और 10 साल मदीने में रहे, और 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो भी चूंकि निहायत इब्तदाई मुसलमानों में से थे, इसलिए आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर आपको कमोबेश 22-23 साल खिदमत की तौफीक मिलती रही। गज़वा बदर के अलावा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम गजावात में शामिल होने की तौफीक मिली, सिवाय एक आद मौके के जब खुद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मदीना छोड़ गए थे और आप शरीक ना हो सके। 10 हिजरी में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया जो हजतुल विदा के नाम से मशहूर है। इस मौके पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हज पर हजारों सहाबा का इज्तिमा था जो तारीख इस्लाम में एक खास वाकया है। गरज आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपको हर तहरीक और हर नेकी में शामिल होने की तौफीक मिली, और आपकी इन अजीमुश्शान खिदमात के नतीजे में अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार दीनी और दुनियावी नेमतों से नवाजा। 3 खास मौकों पर आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बिशारत दी। वो मौके ये हैं: नंबर एक, बैर रोमा की खरीदारी; नंबर दो, मस्जिद नबवी की तोसी; और नंबर तीन, गज़वा तबूक के लिए इमदाद। आपकी माली कुर्बानियों के नतीजे में आपको गनी के लकब से याद किया जाता है। दावत इल्लाह के कामों में भी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी से पीछे ना थे। इब्तदाए इस्लाम में ही आपने हबशा हिजरत फरमाई और वहां अपने मुख्तसर क्याम में इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। आप बहुत खुश अखलाक थे और आपकी शराफत, शर्म हया और जुदो सखा की वजह से आपके कुरैश के शराफा के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। आपको खुदा ताला ने अक्ल व फिरासत से नवाजा था, इसलिए दावत इल्लाह का कोई मौका आप जाये नहीं करते थे। और आपकी मकबूलियत और नेक शोहरत की वजह से लोग खुलकर आपसे तबादला ख्याल करते और कई कई दिन आपके पास रहकर आपकी मेहमान नवाजी से भी लुत्फंदोज होते। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में खिदमत। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर खिलाफत में एक फितना नमूदार हुआ जिसमें कबाइल अरब ने बगावत कर दी। ये फितना खत्म हुआ तो इराक और शाम के साथ जंगें शुरू हो गईं। हजरत अबू बकर ने यह पसंद फरमाया कि हजरत उमर और हजरत उस्मान और हजरत अली रज़वानुल्लाह अलैहिम जैसे जलील कदर सहाबा को मैदान जंग की बजाय अपने पास मदीने में ही रखा जाए। हजरत उस्मान भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों के खास मुशीरों और मोतमिदीन में से थे और आप रजी अल्लाह ताला अन्हों का दस्तो बाजू बनकर खिदमात की तौफीक पाते रहे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों के अमूर खिलाफत में आप नहायत कीमती मशवरे दिया करते थे। बाज़ ज़रूरी खतूत और हालात लिखना भी आपके ज़िम्मे था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के ज़माने में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को माली ख़िदमात की भी तौफीक मिलती रही। चुनाचे एक मरतबा मदीने में सख्त कहत पड़ा। उन्हीं दिनों हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के 1000 गल्ले के ऊँट बाहर से आए। मदीने के दूसरे ताजरों ने बहुत सा रुपया देकर गल्ला खरीदना चाहा, लेकिन आप रजी अल्लाह ताला अन्हों के दिल में गरीबों के लिए हमदर्दी थी, वो गालिब रही और सारा गल्ला मदीना के गुराबा के लिए वक्फ कर दिया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो हज के लिए मक्का तशरीफ ले गए तो आपको मदीने में अपना नायक बनाकर छोड़ गए। हजरत अबू बकर ने वफात से कबल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों को खलीफा नामजद करने का इरादा किया और इसके लिए बाज़ बुजुर्ग सहाबा से मशवरा लिया। जब आपसे पूछा तो आपने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों की खिदमत में अर्ज किया कि जहां तक मैं जानता हूं, इनका बातिन इनके जाहिर से भी अच्छा है और हम में से कोई शख्स इनके बराबर नहीं। चुनाचे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने आपका मशवरा कबूल फरमाया और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपने बाद खलीफा नामजद फरमाया और इसके लिए बाकायदा एक अहदनामा लिखवाया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के इरशाद पर इस अहदनामे की तहरीर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तहरीर फरमाई। हजरत उमर के दौर में खिदमत। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा सानी बने और हजरत उमर की खिलाफत का आगाज 22 जमादिस्सानी 13 हिजरी बामुताबिक 22 अगस्त 634 ईस्वी को हुआ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो अगरचे उमर में हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो से छोटे थे और बाद में ईमान लाए थे, लेकिन आप हजरत उमर की इसी तरह इताअत करते थे जिस तरह हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो की इताअत करते थे। हजरत उमर भी आपकी बहुत कदर किया करते थे और आपसे अहम मामलात में मशवरा लेते थे। हजरत उमर के अहद में मुसलमानों को गैर मामूली फतुहात नसीब हुई। हजरत उमर ने भी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों की तरह मुमताज सहाबा को मदीने में रखना पसंद फरमाया और इन्हें मैदान जंग में ना भेजा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जब इस्तेहकाम सल्तनत के लिए मुख्तलिफ महकमे बनाए तो आपको सदाकात के हिसाब किताब पर मामूर फरमाया। आप अमीन खिलाफत कहलाते थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों का जमाना खिलाफत 10 साल के लगभग था اور اس قلیل عرصے میں اسلام کو ہر لحاظ سے غیر معمولی ترقیات نصیب ہوئیں۔ اسلامی سلطنت مشرق میں افغانستان اور ہند کی سرحدوں تک اور مغرب میں مصر کی آخری حدود تک، شمال میں شام سے آگے تک اور جنوب میں یمن سے آگے تک پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ ملکی انتظام اور استحکام سلطنت کے لیے حضرت عمر نے غیر معمولی اصلاحات فرمائیں اور مذہبی آزادی اور امن قائم کیا۔ بنین و انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اس کے پیچھے یقیناً حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے جلیل القدر صحابہ کے قیمتی مشورے، محنت اور بے لوث خدمات بھی کار فرما رہی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد کو سنہری عہد بنانے کا باعث بنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر 23 ذوالحجہ 23 ہجری کو قاتلانہ حملہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے انتخاب کے لیے ایک کمیٹی مقرر کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام اور عبداللہ بن عمر رضوان اللہ علیہم کے مشورے سے کسی ایک کو میری وفات سے 3 دن کے اندر اندر خلیفہ مقرر کر لینا۔ یہ سب ان جلیل القدر صحابہ میں سے تھے جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور حضرت عمر کے عہد تک انہوں نے اسلام کی بہترین خدمات سر انجام دی تھیں اور نظام خلافت کی پوری پوری اطاعت کر کے دکھائی تھی۔ حضرت عثمان کا دور خلافت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 27 ذوالحجہ 23 ہجری کو ہوئی، اور اس کے 3 دن بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کثرت رائے سے خلیفہ ثالث منتخب کیا گیا۔ حضرت عثمان اب 70 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ نے 35 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ 23 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر خدمات کی توفیق پائی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافتوں کے دوران، جن کا عرصہ 12 سال سے کچھ زیادہ بنتا ہے، خدمات سر انجام دیں۔ لیکن اللہ تعالی کی تقدیر میں خلیفہ بن کر بھی آپ نے مزید اتنے سال خدمت دین کی توفیق پانی تھی جتنے سال مجموعی طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافتوں کا زمانہ بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیش گوئیاں بھی آپ کے خلیفہ بننے کے بارے میں موجود تھیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو ایک کرتا پہنائے گا، اگر لوگ تم سے یہ مطالبہ کریں کہ اس کرتے کو اتار دو تو تم ہرگز اس کو نہ اتارنا۔ اس پیش گوئی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی پوری تصویر کھینچ دی گئی تھی کہ آپ خلیفہ ہوں گے اور دوران خلافت کوئی فتنہ نمودار ہوگا اور فتنہ کرنے والے آپ کو خلافت چھوڑنے پر مجبور کریں گے تاکہ خلافت راشدہ کسی طرح ختم ہو جائے اور مسلمانوں کی وحدت اور طاقت منتشر ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ ایسی صورت میں اپنے منصب پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جہاں اسلام کو مزید ترقیات نصیب ہوئیں اور سلطنت کو وسعت ملی، وہاں فتنوں نے بھی سر اٹھایا اور بالآخر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ انتخاب خلافت۔ جن جلیل القدر صحابہ کی خلافت ثالثہ کے انتخاب کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کی نمائندگی میں 3 دن تک گلیوں اور بازاروں میں پوشیدہ طور پر بھی لوگوں کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اکثر لوگوں کے دلوں کو خدا تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھکا دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق ان کی وفات کے 3rd دن تمام مسلمان مسجد نبوی میں اکٹھے ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محراب میں بلایا اور کہا کہ پہلے خدا کو حاضر ناظر جان کر عہد کریں کہ قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق پر چلیں گے، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کر لیا تو حضرت عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کی، اور اس کے بعد تمام حاضرین نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جس روز انتخاب خلافت ہوا وہ یکم محرم 24 ہجری بمطابق 7 نومبر 644 عیسوی کا دن تھا۔ خلیفہ ثالث کا پہلا خطاب۔ بیعت لینے کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور ایک مارکۃ الآرا تقریر کی، جس کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا، لوگو، خدا سے ڈرو اور مال و دولت کے فتنے میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے مال و متاع، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، لہو و لعب اور زینت کا سامان ہے اور آپس میں فخر و غرور کا باعث ہے۔ یاد رکھو، اموال و اولاد کی کثرت اس بارش کی مانند ہے جو خشک و بنجر زمینوں کو سرسبز و شاداب بنا دے، اور کفار اس کے نتائج میں لہلہاتے ہوئے کھیتوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور فخر و غرور کرنے لگے۔ پھر ایک تیز و تند ہوا آئے اور ان کھیتوں کو خشک کر کے زرد بنا دے، اور پھر ان کا ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے۔ آخرت میں خدا کا سخت عذاب بھی ہے اور بخشش و رحمت بھی، اور دنیا کی زندگی تو صرف غرور کی کنجی ہے۔ دنیا میں بہترین شخص وہ ہے جو خدا پر بھروسہ رکھے اور اس کی پناہ میں رہے اور اللہ اور اس کی کتاب کو مضبوط پکڑے رہے۔ لوگو، مجھے تمہاری رہنمائی کی اہم خدمت سپرد کی گئی ہے۔ اس کام میں میں صرف خدا ہی کی مدد چاہتا ہوں، اور بھلائی کی توفیق خدا ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ میں خدا سے ہی توفیق کا طالب ہوں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ ممبر سے نیچے اتر آئے اور تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے مختلف صوبوں کے حاکموں اور فوج کے افسروں کے نام فرمان جاری کیے کہ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کرو، اور جس طرح سابقہ خلفاء کے زمانے میں مذہبی اور سیاسی امور کو نیک نیتی اور تندہی سے سر انجام دیتے آئے ہو، اسی پر کام کرتے چلے جاؤ۔ نظام حکومت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو نظام حکومت چھوڑ گئے تھے، اسی کو آپ نے جاری رکھا اور کوئی خاص تبدیلی نہ فرمائی، البتہ بعد میں ضرورت کے مطابق آپ نے بعض گورنر تبدیل فرمائے، چنانچہ حجاز کے صوبے میں کوئی تبدیلی نہ فرمائی۔ کوفہ میں تبدیلی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وصیت فرما گئے تھے، ان کی وصیت کے مطابق مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہٹا کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ بصرہ کے گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کوفہ میں شورش اٹھی تو آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ سے تبدیل کر کے کوفہ بھیج دیا، اور بصرہ میں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عامر کو گورنر مقرر کر دیا۔ شام کے گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد سے امیر معاویہ بن ابو سفیان تھے اور آخر تک وہی رہے۔ مصر کے گورنر عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بعد میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو گورنر مصر مقرر کر دیا گیا تھا۔ افریقہ کی فتح آپ کے زمانے میں ہوئی، اور وہاں کا گورنر عبداللہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اہم واقعات و فتوحات۔ اسلام کی ترقی کو دیکھ کر دشمن نے تلوار کے زور سے اسے روکنا چاہا، چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو جب تبلیغی خطوط لکھے تو اس وقت فارس اور روم کی دو عظیم الشان سلطنتیں دنیا پر حکومت کرتی تھی۔ فارس کی سلطنت عراق، ایران اور براعظم ایشیا کے اکثر علاقے پر مشتمل تھی۔ روم کی سلطنت پہلے تمام یورپ، مصر اور ایشیائی کوچک تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس کا مرکز اٹلی کا شہر روم تھا۔ بعد میں اس حکومت کے دو ٹکڑے ہو گئے، मगरबी रोम की हुकूमत का मरकज तो इटली का शहर रोम ही रहा, लेकिन मशरकी रोम का मरकज कुस्तनतुनिया हो गया। मशरकी रोम की हुकूमत शाम, फलस्तीन, मिस्र, हबशा और एशियाई कोचक पर मुश्तमिल थी। फारिस का हुक्मराने आला किसराए फारिस कहलाता था और रोम का हुक्मराने आला कैसरे रोम कहलाता था। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को तबलीगी खतूत रवाना फरमाए थे। किसराए फारिस ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत जलाकर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और जंग की तैयारी करने लगा। उधर शाम के गस्सानी बादशाह को जब दावत इस्लाम भेजी गई तो उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद को शहीद कर दिया। चुनाचे 9 हिजरी में जंगे मौता से उनके साथ जंगों का आगाज हो गया। कैसरे रोम हेरकल ने कसीर फौजें शाम में भेज दी और इस तरह फारिस और रोम के साथ मुसलमानों की जंगें शुरू हो गईं। आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गजवाए खंदक के मौके पर एक पत्थर तोड़ते हुए कशफी नजारा दिखाया गया था कि मुसलमानों के हाथों ये इलाके फतह होंगे। चुनाचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो और इनके साथियों के जरिए जनूबी इराक और शाम का कुछ हिस्सा फतह कर लिया गया था और शाम में दिमश्क का मुहासरा जारी था कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीने में वफात पा गए और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा हुए। हजरत उमर के जमाने में फारिस की तरफ इराक, मदाइन, ईरान में आजरबाईजान, तिब्रिस्तान, आर्मीनिया, किरमान, सीस्तान और मकरान और खरासान तक के इलाके फतह हो गए थे और रोम में शाम, फलस्तीन, बैतुल मकदस और मिस्र फतह हो चुके थे और मफतूहा इलाकों को सूबों में तकसीम करके एक अजीमुशान इस्लामी सल्तनत कायम हो चुकी थी। लेकिन रूमी और ईरानी अपनी ताकत जमा करके अपने इलाके वापस लेने की कोशिश कर रहे थे और जंगो जदल का सिलसिला अभी जारी था कि 23 हिजरी में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल हो गया और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा हुए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में भी रूमियों और ईरानियों के साथ कई जंगें हुई। बाज इलाकों को दोबारा फतह करना पड़ा और कई नए इलाके फतह होकर इस्लामी परचम तले जमा हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इराक में दरियाए फरात के किनारे कूफा नाम का एक शहर तामीर करवाया जिसके वस्त में एक जामिया मस्जिद तामीर करवाई थी जिसमें 40,000 मुसलमान नमाज पढ़ सकते थे। इसी तरह इराक और ईरान की सरहद पर बसरा भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ही तामीर करवाया था और इन दोनों अहम शहरों में मुसलमान आबाद हुए थे। उस जमाने में इराक के तमाम मुकामात आर्मीनिया तक कूफा के मातहत थे और ईरान के मकबूजात बसरा के मातहत थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत में इन दोनों सूबों की फौज ने बाज मौके पर इकट्ठे और बाज मौके पर अकेले ईरान की आखिरी हदूद तक के इलाकों को फतह कर लिया और ईरान का आखिरी बादशाह यज़दगर्द मारा गया और ईरान के सासानी खानदान का खात्मा हुआ। आजरबाईजान, आर्मीनिया, तिब्रिस्तान, फारिस, खरासान, तखारिस्तान, मरूरूद, जोजान, ताइन, बल्ख, ख्वारिज्म, जरंज और जरंज से सरहद हिंद तक के मुकामात फतह हुए और गजनी और काबुल व जाबलिस्तान से आगे फतुहात पहुंच गईं। शाम का मुल्क पहले 4 सूबों दिमश्क, उर्दन, हम्स और किनसरीन पर मुश्तमिल था। बाद में फलस्तीन को भी शाम में शामिल कर लिया गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में अमीर मुआविया उर्दन और दिमश्क के गवर्नर मुकरर हुए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में सारे मुल्क शाम के गवर्नर बना दिए गए। मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाबला ज्यादातर रूमियों से रहता था और वो बहरी रास्ते से भी हमला करते थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में पहली मरतबा मुसलमानों ने बहरी बेड़ा बनाया। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रूमियों से बहरी जंगें करके शाम का साहली इलाका और कब्रस वगैरह फतह कर लिए और कुस्तनतुनिया पर भी लश्कर कशी की, लेकिन कुस्तनतुनिया फतह ना हो सका। मिस्र में अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो गवर्नर थे। रोमियों ने हिरकल से इमदाद तलब करके एक जबरदस्त बहरी बेड़ा रवाना किया और रूमी फौजें इस्कंदरिया में उतर गईं। अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुकाबला करके इस्कंदरिया को फतह कर लिया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहद की फतुहात में शुमाली अफ्रीका की फतह एक शानदार फतह की हैसियत रखती है। इस्कंदरिया के मार्के से फारिग होकर अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की इजाजत से अब्दुल्ला बिन साद के जेरे कमान एक लश्कर तैयार करके अफ्रीका की जानिब रवाना हुए। उन्होंने त्राबलस फतह किया। बाद में अब्दुल्ला बिन साद को ही हजरत उस्मान ने मिस्र का गवर्नर भी मुकर्रर कर दिया। अब्दुल्ला बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हो और अब्दुल्ला बिन नाफे रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मिलकर त्राबलस से तंजा तक का इलाका फतह किया। वहां कैसर की तरफ से जर्जीर ग्रेगरी बादशाह था। यहां लंबा अरसा लड़ाई हुई। मदीने से दूर होने की वजह से हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को खबरें कम मिलती थी। चुनाचे आपने अब्दुल्ला बिन जुबैर को लश्कर देकर अब्दुल्ला बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हो की मदद के लिए भेजा। जर्जीर ग्रेगरी ने ऐलान किया कि जो शख्स मुसलमानों के सरदार का सर काट कर लाएगा 1,00,000 दीनार उसे इनाम दिया जाएगा। नीज वो अपनी बेटी फिलपाना का निकाह भी उससे कर देगा। इस्लामी लश्कर ने अब्दुल्ला बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हो को पीछे रहने का मशवरा दिया। जब अब्दुल्ला बिन जुबैर कुमक लेकर पहुंचे तो उन्होंने ऐलान किया कि जो शख्स जर्जी ग्रेगरी को कत्ल करेगा 1,00,000 दीनार उसे इनाम दिया जाएगा और उसकी बेटी से उसका निकाह कर दिया जाएगा और उसे याकूबा का वाली भी मुकर्रर कर दिया जाएगा। इससे मुसलमानों के हौसले बढ़ गए और चंद दिनों में रूमी पसपा हो गए। जर्जीर ग्रेगरी अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हों के हाथों कत्ल हुआ। शुमाली अफ्रीका की फतह के बाद हजरत उस्मान ने अफ्रीका का अलग सूबा बना दिया और इसका गवर्नर अब्दुल्ला बिन नाफे रजी अल्लाह ताला अन्हों को मुकर्रर फरमाया। मिस्र की हुकूमत अब्दुल्ला बिन साद के पास रही। अब्दुल्ला बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हों को हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों ने माल गनीमत का 5वां हिस्सा बतौर इनाम दिया, जिसका वो पहले वादा कर चुके थे, और अब्दुल्ला बिन जुबैर को 1,00,000 रुपया और जर्जीर ग्रेगरी की बेटी की शादी अब्दुल्ला बिन जुबैर से कर दी गई। 30 हिजरी के करीब रूमियों ने मिस्र और शाम और शुमाली अफ्रीका को वापस लेने के लिए पूरी तैयारी के साथ 600 कश्तियों का एक जंगी बेड़ा तैयार किया और सवाहिल शाम से लेकर इस्कंदरिया तक फैला दिया। मिस्र से अब्दुल्ला बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्कंदरिया की तरफ बढ़े और शाम से अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो को बहरी बेड़ा भिजवाने का इरशाद हुआ। खुश्की की जंग में कैसर रूम कुस्तनतीन खुद भी शामिल हुआ। बहरी जंग अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खुद लड़ी। मुसलमानों ने अपनी तमाम कश्तियों को आपस में बांध दिया और रूमियों को भगा दिया। इस जंग में मुसलमानों को बहुत सी कश्तियां मिली जिनको इस्लामी बेड़े में शामिल कर लिया गया और इस तरह मुसलमानों का बहरी बेड़ा बहुत मजबूत हो गया। इससे पहले इस्लामी फौजों को बहरी जंगों का मौका नहीं मिला था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों के अहद खिलाफत में फतुहात का सिलसिला 35 हिजरी तक जारी रहा और इस्लामी सल्तनत बहुत वसी हो गई। दावत इल्लाह और तालीम व तरबियत। फतुहात के नतीजे में इस्लामी रियासत में गैर मामूली वसत पैदा हो गई थी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पहले खुलाफा की तरह दावत इल्लाह के कामों में और इस्लाम में दाखिल होने वाले नए लोगों की तालीम व तरबियत के लिए कई इंतजाम किए। इन कामों में नई मसाजिद की तामीर और दरस व तदरीस का काम बतौर खास शामिल है। जो जो मंसूबे इशात दीन हक और मुसलमानों की तालीम व तरबियत के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जारी फरमाए, आपने उनको आगे बढ़ाया। مساجد کی تعمیر کے بعد ان میں آئمہ اور مؤذن مقرر فرمائے، کیونکہ تعلیم و تربیت کا بہترین ذریعہ مسجد کو ہی سمجھا جاتا تھا، جہاں باجماعت نمازوں کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا بھی سلسلہ جاری تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مفتوحہ علاقوں میں آباد ہو گئے۔ صوبوں کے اکثر حاکم صحابہ اور ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے، اور نمازوں اور قرآن و حدیث کے درس کا وہی اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ میں آباد، وہ قرآن اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جنہیں بڑی کثرت سے لوگ سنتے تھے اور تربیت حاصل کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے عالم اسلام میں جمعے کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کیا، اور نماز جمعہ سے پہلے دوسری اذان آپ کے زمانے میں شروع ہوئی، تاکہ لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا جا سکے کہ خطبہ جمعہ شروع ہو چکا ہے۔ حج کے موقع پر تمام صوبوں سے لوگ بڑی کثرت سے شامل ہوتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ سنتے تھے اور آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے تھے۔ مدینہ اور مسجد نبوی تعلیم و تربیت کے سب سے بڑے مراکز تھے، جہاں دین سکھانے کا باقاعدہ انتظام تھا۔ غرض یہ کہ ہر صوبے میں دعوت اللہ اور تعلیم و تربیت کا کام جاری رہا، شریعت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا ملتی تھی، تمام مذاہب کو آزادی حاصل تھی، اور انہیں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کی بھی مکمل آزادی حاصل تھی۔ اشاعت قرآن۔ قرآن کریم جب پورا نازل ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی وحی کے مطابق اس کی ترتیب فرمائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے قرآن کریم کی وحی کو، جو مختلف کاتبوں نے لکھی تھی اور مختلف رسم الخط میں تھی، اکٹھا کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب کے مطابق کر کے محفوظ کر دیا۔ پیارے بچوں، عرب قبائل کے مختلف لہجے تھے، جس میں ایک ہی لفظ کو مختلف طریق سے ادا کیا جاتا ہے۔ شروع میں قرآن شریف نازل ہوا تو ان مختلف لہجوں میں اسے پڑھنے کی اجازت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب قرآن شریف کے نسخے ساری دنیا میں بھجوانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت عثمان نے اختلافات کے اندیشے سے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان نسخوں کو اس ایک لہجے پر لکھا جائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا لہجہ تھا۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور ایسے نسخے تیار کروا کر عالم اسلام میں بھجوا دیے۔ آپ کی یہ خدمت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ مسجد نبوی کا پختہ کروانا۔ ابھی تک مسجد نبوی کا فرش کچا تھا اور چھت کھجور کی شاخوں اور لکڑی سے بنی ہوئی تھی، بارش کے ایام میں چھت ٹپکتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عثمان نے مسجد نبوی کے ملحقہ مکانوں کو خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کرنے کے نمایاں خدمت حاصل کی۔ اپنی خلافت کے دوران آپ نے اپنے پاس سے پیسہ خرچ کر کے مسجد کا فرش، دیواریں اور چھت پختہ کروائی۔ تعمیرات کے منصوبے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کئی نئی تعمیرات ہوئیں، وسیع تعمیرات کے منصوبے بنے اور رفاہ عامہ کے کام ہوئے۔ حضرت عثمان نے کئی پبلک عمارتیں بنوائیں، سڑکیں، پل، مسافر خانے اور سرائیں تعمیر ہوئیں۔ کوفہ کی سرائے کو وسیع کیا گیا، مدینہ اور نجد کی راہ میں نئی سرائیں بنوائی گئیں، راستوں پر میٹھے پانی کے کنویں کھدوائے گئے۔ مرکز اسلام مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے ایک بند بنوایا گیا، ایک برساتی نہر کھود کر اس کا رخ تبدیل کیا گیا۔ ہر صوبے کی بنیادی ضروریات کو مد نظر رکھ کر تعمیرات کے منصوبے بنائے گئے۔ غرض یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہر طرح سے وسعت پیدا ہوئی، آپ ذاتی دلچسپی لے کر ان منصوبوں کو مکمل کروایا کرتے تھے۔ آپ کے عہد میں جو علاقے فتح ہوئے تھے ان میں فوجی چھاونیاں تعمیر کی گئیں، اسی طرح قومی چراگاہوں میں بھی اضافہ کیا گیا اور لوگوں کو پہلے کی نسبت زیادہ سہولتیں میسر آنے لگیں۔ فتنوں کا ظہور और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत। जहां मुल्क पर मुल्क फतह होते गए और फौज दर फौज लोग इस्लाम में दाखिल होते रहे, वहां हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के निस्फ आखिर में फितनों ने सर उठाया। बाज गैर तरबियत याफ्ता नौ मुसलिमों ने पुराने मुसलमानों के साथ हसद और रकाबत शुरू कर दी और खलीफा वक्त की तरफ से मुकर्रर किए हुए हुक्मरानों पर तनकीद की। मालो दौलत के लालच में और शरीयत की पाबंदियों से आजादी हासिल करने के लिए वो चाहने लगे कि ये इंतजाम दरहम बरहम होकर हुकूमत इनके हाथों में आ जाए। लेकिन इन फितनों का असल मुहर्रिक एक यहूदी अब्दुल्ला बिन सबा था, जो यमन का रहने वाला और नहायत बदबातिन इंसान था। इस्लाम की बढ़ती हुई तरक्की को देखकर अब्दुल्ला बिन सबा इस गरज के लिए मुसलमान हुआ कि किसी तरह मुसलमानों में फितना डलवाए और दोस्त बनकर दुश्मन का काम करे और इत्तेफाक की आड़ में इख्तलाफ पैदा करे और नेकी के पर्दे में बदी की तहरीक करे। ये शख्स हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों की खिलाफत के पहले निस्फ में मुसलमान हुआ और तमाम बिलाद इस्लामिया का दौरा इस गरज से किया कि हर जगह के हालात से खुद वाकफियत पैदा करे और अपने मतलब के आदमियों का इंतखाब करके मुख्तलिफ मुल्कों में शरारत के मरकज कायम करे। उस वक्त सियासत के मरकज बसरा, कूफा, दिमश्क और फुस्तात थे। पहले इसने इन मुकामात का दौरा किया और हुकूमत के सजा याफ्ता लोगों को अपना हम ख्याल बनाया। तीन साल इसने अपनी कार्रवाई को खुफिया रखा और फिर खुलम खुला लोगों में गलत और झूठी बातें फैलाकर खिलाफत के बारे में बदजन करने की कोशिश की। इसने ये अकीदा पैदा किया कि हर नबी का एक वसी होता है और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मिस्र में इसने एक खुफिया जमात तैयार की और अपने नुमाइंदे दूसरे सूबों में अपने ख्यालात की इशात के लिए भिजवाए। हजरत उस्मान को जब इस खुफिया तहरीक का इल्म हुआ तो आपने बाज़ सहाबा को मुख्तलिफ सूबों में भिजवाया। आपके नुमाइंदे सूबों में अमन व अमान की खबर लाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों ने तमाम गवर्नरों को मदीना बुलवा कर मशवरा किया और फैसला फरमाया कि नरमी से ऐसे लोगों को तमाम गवर्नर अपने अपने मुल्क में समझाएं और खुद भी सख्ती करने से इज्तनाब किया। आपने फरमाया कि मुझे डर है कि ये वही फितना ना हो जिसकी खबर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके हैं। अमीर मुआविया ने आपको शाम अपने साथ ले जाने की पेशकश की, लेकिन आपने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना को छोड़ना मुनासिब ना समझा और ना ही मुआविया को इजाजत दी कि वो आपकी हिफाजत के लिए मदीने में फौजें भेजे। अब्दुल्ला बिन सबा और इसके साथियों ने फैसला किया कि मुख्तलिफ लोगों के वफूद मदीना भेजकर हजरत उस्मान पर इल्जाम लगाए जाएं और आपको खिलाफत से अलहदा होने के लिए कहा जाए। चुनाचे 34 हिजरी में हज के बाद इसके कारिंदे मदीना आए। आप पर एतराज करके खिलाफत छोड़ने का मुतालबा किया गया। आपने इनके बेबुनियाद इतराजात के बड़े सब्र तहमुल से जवाब दिए। चुनाचे लाजवाब होकर ये लोग मदीना से वापस जाने के इरादे से निकल आए। वापस जाकर उन्होंने मिस्र, कूफा और बसरा में अपने हम ख्याल लोगों को चिट्ठियां लिखी कि उमरे के बहाने से निकलकर मदीने में जमा हो जाएं और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया जाए। चुनाचे अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि बागी हजारों की तादाद में अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए मदीने में दाखिल हुए और चंद रोज तक हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों के घर का मुहासरा कर लिया। हजरत उस्मान ने मदीने को खून रेजी से बचाने और सहाबा रजवानुल्लाह अलैहिम के वजूदों को बाकी रखने के लिए तमाम सहाबा हत्ता के अपने घर वालों और मदीने के दूसरे मुसलमानों को मुसल्ला होने से मना फरमाया। आपके मना करने के बावजूद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम और उनके बच्चों जिनमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हजरत जुबैर और हजरत तलहा के बेटे खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, ने हजरत उस्मान के घर का पहरा देना शुरू कर दिया। जब बागियों ने घर के अंदर दाखिल होना चाहा तो उन्होंने थोड़ी तादाद के बावजूद बागियों से मुकाबला किया। ये देखकर बागियों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों के घर के दरवाजों को आग लगा दी और इनमें से बाज बदबख्त साथ वाले मकान से दीवार फलांग कर घर के अंदर दाखिल हुए और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों को शहीद कर दिया गया। ये 18 जिलहिज्जा 35 हिजरी व मुताबिक 21 मई 654 ईस्वी का वाकया है। कहते हैं जिस वक्त आपको शहीद किया गया उस वक्त आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। आपकी एक बीवी नाइला ने बचाना चाहा, लेकिन उनकी हथेली कट गई और दुश्मन आपको मारने में कामयाब हो गए ताकि खिलाफत और मरकजियत दोनों खत्म हो जाएं। शहादत के वक्त आपकी उम्र 82 साल थी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों की सीरत। ताल्लुक बिल्ला। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों नहायत मुत्तकी, परहेजगार और मुतवक्किल इंसान थे। आपकी सारी उम्र खिदमत इस्लाम और इबादात बजा लाने में गुजरी। बाज़ोकात सारी सारी रात आप सजदे में गिरे रहते थे और अल्लाह से राजो न्याज करते रहते थे। मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने आपको शहादत की खबर पहले ही दे दी थी, इसीलिए आपने तमाम सहाबा को बागियों का मुकाबला करने से मना फरमा दिया। आपकी खुशखुलकी, चेहरे पे मुस्कुराहट और खूबसूरत शख्सियत भी ताल्लुक बिल्लाह के नतीजे में थी। नमाज जुमा का आप खास एहतमाम फरमाया करते थे, रोजे आखिरी उम्र तक रखते रहे, हज बाकायदगी से अदा करते और जकात अदा फरमाते। महब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उन खास सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम में से थे जिनको आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बतौर खास मोहब्बत थी। आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा अपनी जिंदगी में आपसे राजी होने का इजहार फरमाया। आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां यके बाद दीगरे आपके निकाह में आईं और आपको ज़ुन्नुरैन का खिताब मिला। आपने अपनी अमली जिंदगी से आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर ख्वाहिश को पूरा करके दिखा दिया। चुनाचे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वुसअत, बैरे रूमा की खरीदारी और गज़ाए तबूक पर खास कुर्बानी आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्को मोहब्बत का ही नतीजा था। जब आपके घर का मुहासरा किया गया और चंद सहाबा और उनके बच्चों ने आपकी जान बचाना चाही तो आपने सबको मुसल्ला ना होने और घरों को जाने की हिदायत फरमाई, क्योंकि आपको ख्वाब में आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशारत दे चुके थे कि आज शाम रोजा हमारे यहाँ इफ्तार करना। आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दरमियान आपने किसी चीज को हायल ना होने दिया। इश्के कुरान। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो कुरान करीम के सच्चे आशिक थे। तिलावत कुरान करीम में बहुत वक्त सरफ किया करते थे। आपकी सबसे बड़ी खिदमत इशात कुरान है जो आपने अपनी खिलाफत के दौरान सरंजाम दी। आप कुरान करीम के इब्तदाई और बेहतरीन हुफाज में से थे। लिखा है कि सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम में किताबुल्लाह का हाफिज आपसे बेहतर कोई नहीं था। जुदो सखावत। खिदमत दीन और खुदा ताला की मखलूक के लिए आपने बहुत माल खर्च किया। कभी कोई साइल आपके दरवाजे से खाली नहीं फिरा। सारी उम्र खुदा के बंदों के लिए भी बेदरेग खर्च किया। जब मदीने में कहत पड़ा तो आपने अपने खर्च पर एक आम लंगर जारी फरमाया जहां से हजारों लोग महीनों तक सहूलत से खाना हासिल करते रहे। आप जब हज को जाते तो 8वीं तारीख को मिना में हुज्जाज को अपनी तरफ से खाना खिलाया करते थे। आपके इस वस्फ की वजह से लोग आपको गनी कहते हैं। सब्र व तहम्मुल। इब्तदा से आप में बेहद सब्र व तहम्मुल था और बुर्दबारी थी और तबीयत में सादगी और खुश अखलाकी थी। इस्लाम लाने के बाद आपने बड़े सब्र और इस्तकामत से मसाइब को बर्दाश्त किया और खास तौर पर आपके अहद खिलाफत के आखिरी सालों में जिस फितने ने सर उठाया इसमें तो आपने सब्र तहमुल में हद कर दी। फितने के इंस्तेदाद के लिए जब आपको बाज़ लोगों ने सख्ती करने का मशवरा दिया तो आपने फरमाया, जिन उमूर में शरीयत ने मुझे किसी पर सख्ती करने की इजाज़त नहीं दी उन पर हरगिज़ सख्ती को रवा नहीं रखूंगा, खा इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आप पर झूठे इल्जामात लगाए गए, आपको नमाज पढ़ाने से रोक दिया गया, आपका असा जो दरअसल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और हर खलीफा वक्त के हाथ में रहा तोड़ दिया गया, घर का मुहासरा कर लिया गया, खाने पीने की चीजें घर आने से रोक दी गईं और घर को आग लगाकर नौबत आपको कत्ल करने तक पहुंच गई। आपने न सिर्फ खुद इंतहाई सब्र तहमुल से काम लिया बल्कि सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम को भी कसम देकर वापस भिजवा दिया कि इन बागियों का मुकाबला सब्र से किया जाए और अपना मामला पूरे तौर पर खुदा के सुपुर्द कर दिया और बड़ी ही बहादुरी और जुर्रत से जामे शहादत नौश फरमाया। हया, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत में हया बहुत थी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एहसासात का पूरा ख्याल रखते थे। रिवायतों में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा लेटे हुए थे कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह लेटे रहे। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए, तब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह लेटे रहे। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झट अपने कपड़े समेट कर दुरुस्त कर लिए और फरमाया कि उस्मान की तबीयत में हया बहुत है, इसलिए मैं इसके जज्बात का ख्याल करके ऐसा करता हूँ। यतीमों और बेवगान की खबरगिरी। आप बहुत रहम दिल और नरम मिजाज थे, सारी उम्र यतामा और बेवगान और गरीबों की दिल खोल कर मदद करते रहे। आखिरी वक्त भी आपके पास यतामा और बेवगान की अमानते थीं, जो आपने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द की। अपनी जान से भी ज्यादा आपको इनकी अमानतों का फिक्र था। आप हर जुमा एक गुलाम आजाद करते थे और मदीने की हर गली में आपका आजाद करदा गुलाम चलता फिरता नजर आता था। आपको अल्लाह ताला ने बहुत माल दौलत अता फरमाया लेकिन आपने इसका अक्सर हिस्सा दीन के कामों और यतामा बेवगान और गरीबों की खबरगिरी में खर्च कर दिया। बच्चों, अभी तुमने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की कहानी सुनी। इंसान हैरान होता है कि किस तरह आपने इस्लाम की सरबुलंदी, इशात कुरान और खिलाफत के कयाम के लिए अपना माल, जान, वक्त और इज्जत सब कुछ कुर्बान कर दिया, बड़ी वफा के साथ अल्लाह के कामों में लगे रहे और फितनों के वक्त बावजूद ताकत और कुदरत के बदी का मुकाबला ना किया और अमन का शहजादा बनकर सब्र का ऐसा नमूना दिखाया कि आने वाली नस्लें कयामत तक आपके पाक नमूने से सबक हासिल करती रहेंगी और आप पर दुरूद व सलाम भेजती रहेंगी इंशाअल्लाह।